हैं?
अपने मन से खुश
रहें। हाँ तो यहाँ लाओ जरा, ये इधर लाओ, ये वीडियो को। लड़कियों का फोटो खींचने का चाव है तुमको क्या? है? फिर
सारे लोग खींच रहे हैं।
कौन सारे लोग खींच रहे हैं? यहाँ सामने आके तो किसी ने नहीं खींचा,
सबको खींचा।
सामने आके किसने खींचा? विजय भाई से पूछा क्या?
नहीं भाई, इसीलिए उसको बोले।
ये कहाँ, कौन से क्लास में जाता है?
भर्ती किए हुए
है। कहाँ जाता, कहाँ क्लास करने?
आशावान की भाई है भाई।
हैं?
आशावान का भाई है।
कौन?
आशा बहन के भाई है।
क्लास करने कहाँ जाता है?
विक्रमगंज।
हैं?
विक्रमगंज।
विक्रमगंज में यही सिखाया गया तुमको? हैं?
नहीं
क्लास करने कभी नहीं
थे। क्लास करने कभी नहीं होते। हाँ, इसे इसको बुला किसने लिया?
ये भाई ने बोले हैं।
वही लेकर के आया है हम लोगों को विक्रमगंज से, माता को भाई बहन को लेकर के ही आया है।
क्लास में नहीं बैठने देना जो क्लास नहीं करते हैं उनको।
ऐसा फॉलो किया गया है, लेकिन एक आध ऐसे जुगात्मा है जो जिनकी जुगल चल रही है, उनका जो भाई लोग है सोचता है तो हम भी क्लास में बैठेंगे। तो एक दो ऐसी आत्मा है, लेकिन यहाँ सब जितने भी लोग हैं बाबा भट्टी किए हुए हैं।
कौन जानता है मोबाइल डिलीट करना है?
सब खत्म करना,
वही कर देगा बाबा।
है?
वही कर देगा।
कौन कर देगा?
वही कर देगा।
वो नहीं करेगा। इधर
इधर इधर आइए।
डिलीट करके हमको दो।
इधर इधर भाई, भाई साहब इधर आ करिए ना। खेल मत,
ये वाणी चल रही थी 2268 तीसरे पेज के मध्याध में बात चल रही थी। अभी श्री कृष्णपुरी तो है नहीं, तो क्या कहेंगे? कंसपुरी ही है। कंसपुरी में कंस क्या जघन्य अपराध करता था? अपराध तो बहुत करता था, लेकिन जघन्य अपराध कौन सा करता था? कन्याओं को पटक के मार देता था, माने उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता था। अभी बाप को कृष्णपुरी रचनी पड़े, पहले तो करो समझाने वालों की कॉन्फ्रेंस। क्योंकि समझाने वाले सही रीति समझाते नहीं हैं कि कृष्णपुरी की रचना कैसे होती है और कंसपुरी कैसे बनती है। समझाने के लिए बड़ी युक्ति रखनी पड़ेगी। श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। अब योगियों का ईश्वर शिव होगा या कृष्ण होगा? कृष्ण ने तो राजयोग सिखाया नहीं, कृष्ण तो नई दुनिया का पहला पत्ता है। वो तो देवता है, शिव बाबा ने उनको राजयोग सिखाया है, वो फिर श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं, और तुम कहेंगे शिव के लिए है, तो ये बड़ी समझने की बात है। क्योंकि योगीश्वर वही हो सकता है जो सदैव निराकारी स्टेज वाला हो, आत्मिक स्टेज वाला हो। आत्मिक स्टेज वाला ही मन को कंट्रोल कर सकता है, और वो तो है सदा शिव। मन से कोई काम भी लेने की उसे दरकार नहीं है। मन का काम है सोचना विचारना, और वो तो सदैव ही असोचता है। ऐसा असोचता बाप हम बच्चों को भी असोचता बनाने के लिए आए हैं। तो कहते हैं मन मना भव, बड़ी युक्ति चाहिए, आखिरी तो बात खुल ही जाएगी। पूछना चाहिए श्री कृष्ण को, गोला या गोरा या काला क्यों बनाते हो? अगर श्री कृष्ण योगेश्वर है तो कृष्ण को गोरा चेहरा ही दिखाना चाहिए, काला मुंह क्यों दिखाया हुआ है? काला मुंह दिखाने का कोई तो कारण होगा। राम को भी काला दिखाते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं, जगन्नाथ को भी काला दिखाया है। अब सब देवताओं को काला क्यों दिखाई दिया है? जरूर पहले नर थे, नर से नारायण जैसे बनते हैं, नारायण बनते हैं तो देवता बनते हैं, देवताओं को सतो प्रधान कहा जाता है। वो ही देवताएं सुख भोगते भोगते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर शिवलिंग को भी काला दिखाई दिया है। अब शिवलिंग तो निराकार का प्रतीक, वो तो सदैव ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, फिर उसको काला क्यों दिखाया है? कारण तो चाहिए ना, क्योंकि लिंग है साकार स्वरूप की यादगार, और उसमें जो ज्योति बिंदु है वो निराकार की यादगार है। वो निराकार ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करता है, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसको पहले पहले आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। परंतु एक होता है बना बनाया, और एक को बनाया जाता है, तो कुछ अंतर रहेगा या नहीं रहेगा? जिसको बनाया जाता है वो सदैव एक जैसा नहीं रह सकता, और जो बना बनाया है वो सदैव एक रस है, इसलिए सदाशिव कहा जाता है। वो सदाशिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो काला और गोरा होता है। तो हिसाब बताना पड़े क्यों काला होता है। काम इच्छा पर चढ़ने से सब काले हो जाते हैं, काम कहा ही जाता है कामना को, भांति भांति की कामनाएं होती है। कोई भी काम करते हैं तो कोई न कोई देह अभिमानी की कामना भरी रहती है, ऐसा करें वैसा करें। तो बाप बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग तो बिल्कुल अलग चीज है और ज्ञान मार्ग अलग चीज है। जो भक्त होते हैं उनमें ज्ञान नहीं हो सकता, भक्त कहा ही उनको जाता है जिनकी बुद्धि स्थिरियम नहीं होती, भागती रहती है, क्योंकि भगवान के सही रूप का उनको पता नहीं चलता है। ज्ञानी तो ज्ञाता को कहा जाता है, ज्ञान माना ही जानकारी, पहली पहली जानकारी है इस सृष्टि का रचयिता कौन, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन। तो जब ऐसा ज्ञान मिलता है तो भक्ति की कर्मकांड की अंधविश्वास की बातों से वैराग हो जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। पहले पहले ज्ञान आता है फिर भक्ति से वैराग होता है। तो अर्थ भी समझाना पड़े, वो तो ऐसे ही कह देते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, समझाओ कि पहले तुम भी ब्राह्मण थे, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है, अब ब्राह्मण नहीं हो, अभी प्रैक्टिकल में ब्रह्मा आया हुआ है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है, वो ब्रह्म वाक्य बोलने वाला पत्थर की लकीर की तरह ब्रह्म वाक्य बोलता है, वो ब्रह्मा स्वयं नहीं है, उसका नामकरण करने वाला कोई और है। माँ तो स्वयं रचना होती है, वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने ही बड़ी सारी सृष्टि की बड़ी थी बड़ी माँ है, जरूर उसका कोई रचयिता बाप है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो उस ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे तो माता पिता की पहचान होगी, ब्राह्मण कहे जावेंगे। फिर जो ज्ञान मिले उस ज्ञान को धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। बताओ कि हम श्री कृष्ण की ग्लानी कहां करते हैं, हम तो श्री कृष्ण की महिमा करते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु बनाने वाला की तो महिमा चाहिए, रचयिता के मुकाबले रचना कभी ऊंच नहीं हो सकती। कृष्ण रचना है, सृष्टि का पहला पत्ता है, इसलिए कीर्तन भी करते हैं तो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। शास्त्रों में नारायण को सतयुग में ले गए, सत्यनारायण की कथा भी गाते हैं। अब सत्य तो एक परमपिता परमात्मा ही है जो कभी असक्त नहीं होता, था भी सत्य है भी सत्य और होगा भी सत्य। मनुष्य आत्माएं तो जब तमो प्रधान बनती है तो सब झूठी हो जाती है। तो परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं जिस पहले पत्ते कृष्ण की रचना करता हूं उसकी तो बहुत महिमा है, परंतु बाप से बड़ा तो नहीं है। इसलिए बोला कि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चा है, माने बच्चा बुद्धि है। फिर भी बच्चे को वर्षा तो बाप से ही मिलेगा, तो बड़ा युक्ति से समझाना है कि बाप किसको कहा जाता है। बीज को ही बाप कहा जाता है, पत्ते को, टहनियों को, तने को तो बाप नहीं कहेंगे, जड़ों को भी बाप नहीं कहेंगे। बीज बोने वाला जो है, जो बीज का काम करता है, वो ही बीज रूप बाप कहा जाता है। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा है, हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। तो कृष्ण को फादर नहीं कह सकते हैं, वर्षा लौकिक और पारलौकिक फादर से ही मिल सकता है। तुम बच्चे कितनी प्रदर्शनी करते हो, कितना समझाते हो, फिर भी कोई बिरले ही आते हैं। कारण क्या है कि तुम इतना समझाते हो, इतनी वाचा चलाते हो, भाग दौड़ करते हो, फिर भी सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जान सकते। कोई तो कारण होगा, क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि इस मनुष्य सृष्टि की रचना करते समय रचयिता बाप ने जिस रचना को रचा, वो कृष्ण रूपी रचना कहो, ब्रह्मा कहो, वो अपने स्वरूप को ही नहीं समझता। जब ब्रह्मा ही नहीं समझता तो ब्राह्मण बच्चे कैसे समझेंगे? कृष्ण की आत्मा सो ब्रह्मा की आत्मा, कृष्ण की बुद्धि में पहले बैठे कि गीतापति भगवान बाप कौन है, तब बच्चों की बुद्धि में बैठे। इसलिए ब्राह्मणों को भी आज निश्चय होता है, कल अनिश्चय पैदा हो जाता है। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र कब तक चलता रहेगा? कोई तो समय निश्चित होगा। बात बिल्कुल साफ है कि जब तक पहले पत्ते की बुद्धि में बात बैठी नहीं हुई है, तब तक और 500 करोड़ पत्तों की बुद्धि में बात नहीं बैठ सकती। इसलिए सारा मदार एक के ऊपर है, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन है? सृष्टि का पहला पत्ता। پھر بھی باپ کہتے ہیں جب تک باپ کو نہیں پہچانا ہے تب تک کرشن کی کتنی بھی پوجا کریں، کرشن کہو برہما کہو بات تو ایک ہی ہے، کیونکہ ایک ہی آتما کے دو نام ہیں، ایک آدی کا نام ایک انت کا نام، آدی سو انت۔ تو کرشن کی کتنی بھی پوجا کریں کوئی بھی اپنے کل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ کرشن کی آتما برہما کی آتما چندرما کا پارٹ دھاری ہے، چندرونشی تو بن سکتے ہیں پرنتو سوریہ ونشی نہیں بن سکتے۔ امر لوک میں آ نہیں سکتے، امر لوک میں آ سکتے ہیں تب جب امرناتھ باپ کو پہچانے۔ تو یہاں دو باپ کو بھی سمجھانا ہے، دونوں بے حد کے باپ ہیں، ایک ہے آتماؤں کا باپ اور دوسرا ہے منوشیہ سرشٹی کا باپ، پرنتو آتماؤں کے باپ شیو کو کریئٹر نہیں کہیں گے، کیونکہ آتماؤں کا باپ ہے، آتمائیں کریئٹ کی جاتی ہیں کیا؟ نہیں، آتمائیں تو سدیو ہیں ہی ہیں، آتما اویناشی کہا جاتا ہے، تو اویناشی آتماؤں کا باپ جسے شیو کہا جاتا ہے وہ سدا شیو ہے، کریئٹر نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب منوشیہ سرشٹی کے باپ میں پرویش کرتا ہے تو نئی سرشٹی کا کرتا کہا جاتا ہے، تو کریئٹر باپ بھی ساکار، اس کی سرشٹی بھی ساکار، اور پہلا پتا کرشن بھی ساکار۔ پھر بھی کہیں گے کہ ورسا تو کریئٹر باپ سے ہی ملے گا، باقی تو سب رچنا ہے۔ جب ایسے ایک ایک سے بیٹھ ماتھا ماریں گے تب کام چلے گا۔ مکھ بات ہے رچیتا اور رچنا کا پریچے دینا، پہلے یہ بات سکھلانی پڑے۔ تو بتایا کہ 84 جنم لینے والے شری کرشن کا چتر تو کسی کو دے نہیں سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ جو سوئم ہی جنم مرن کے چکر میں آنے والا ہے اس کا چتر دیں گے اور چتر دیکھیں گے تو چتر دیکھنے والے جنم مرن کے چتر چکر میں آتے رہیں گے یا نہیں آتے رہیں گے؟ کہ جنم مرن کے چکر سے چھوٹ جائیں گے ہیں؟ آتے رہیں گے، اور جب تک جنم مرن کے چکر میں آتے رہیں گے تب تک پرم نام واسی نہیں بن سکتے۔ تو کرشن کا چتر تو دے نہیں سکتے، برہما کا بھی چتر نہیں دے سکتے، کیونکہ کرشن تو پھر بھی 16 کلا سمپورن سرگن سمپن سمپورن ہنسک مریادہ پرشوتم ہے، برہما کو تو دیوتا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ अगर देवता होता तो मंदिरों में पूजा होती, मूर्तियां बनती। न मूर्तियां बनती हैं, न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा का भी चित्र नहीं दे सकते कोई को कि इसे बैठे याद करो, तो ब्रह्मा का भी चित्र नहीं दे सकते क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला है, भिखारी है। ब्रह्मा का भी चित्र नहीं दे सकते, साकारी है या निराकारी है? साकारी है। ब्रह्मा का ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा इतनी तादाद में फोटो खींचा गया, परंतु एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा, निर्विकारी होगा तो निरहंकारी होगा, और जो जैसा होगा उसका दर्शन करने से, देखने से वैसी स्थिति बनेगी। क्योंकि जिसको देखा जाता है वो बार बार याद भी आता है। इसलिए न ब्रह्मा का चित्र दे सकते, न कृष्ण का चित्र दे सकते, फिर ब्राह्मणों को दे सकते हैं? है? ब्राह्मणों का फोटो भी किसी को नहीं दे सकते, ब्राह्मणियों को दे सकते हैं? क्यों? चलो ब्राह्मणों के लिए तो कह दिया कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, उनका फोटो देखना ही नहीं, तो ब्राह्मणियों के लिए तो नहीं कह दिया। ब्राह्मणियों के लिए तो बोला है तुम बच्चियां स्वर्ग के गेट खोलेंगी, तो उनका चित्र रखने में क्या अंतर है, क्या नुकसान है? नुकसान यही है कि वो भी निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। अभी कोई भी मेल या फीमेल ब्राह्मण नहीं है जो ये कहे कि मैं सदा काल का निश्चय बुद्धि बन चुका हूं। निश्चय बुद्धि विजयते, क्या निशानी हुई? जो निश्चय बुद्धि बनते जावेंगे उनकी हर कदम में विजय ही विजय नुदी पड़ी है। कोई भी कार्य में, कोई भी वाचा में उनकी हार नहीं हो सकती, सारी दुनिया उनके ऊपर बलिहार जावेगी। ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। निश्चय बुद्धि कृष्ण की आत्मा बनी है, वो भी नहीं बनी है। कृष्ण की आत्मा तो पिछले 63 जन्म से ये पक्का किए बैठी है कि गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण। और आत्माओं के अंदर इतना संस्कार पक्का नहीं बना होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ सुनते हैं, अपने बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, परंतु कृष्ण वाली आत्मा तो सुनती भी है और प्रैक्टिकल में पक्का किए बैठी है कि मैं ही गीता का भगवान हूं। तो जहां गहरी जड़ें बैठी हुई है जन्म जन्मांतर की, गीता माता का पति भगवान बनकर के बैठने की, वो जल्दी जड़ें समाप्त नहीं हो सकती, टाइम लग जाता है। इसलिए बोला कि कृष्ण की आत्मा जो चंद्रमा के रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में अभी पार्ट बजा रही है, वो मात पिता जो सृष्टि के मात पिता जगत पिता जगदम्बा कहे जाते हैं, महाकाल और महाकाली कहे जाते हैं, उनके सर माथे पर बैठी हुई है। कोई भी माँ बाप होते हैं अपने पहलौटी के बड़े बच्चे को सर माथे पर बिठाते हैं, क्योंकि जानते हैं हमारे वर्षे का हकदार यही बच्चा होगा। परंपरा चली आई है कि जो भी राजा हुआ है अपने बड़े बच्चे को राजा ही देता आया है, वर्षा देता आया है। क्यों? कोई कारण होगा? क्या कारण है? कारण यही है कि जो बड़े बच्चे की पैदाइश होती है वो माता पिता के लंबे समय की प्योरिटी के बाद होती है। लंबे समय तक माता और पिता कुमार और कुमारी का जीवन व्यतीत करते हैं, फिर वो पवित्रता की पावर से पहले बच्चे का जन्म होता है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं, इसलिए पवित्रता का बड़ा मान है। माता पिता भी अपने बड़े बच्चे को सर माथे पर रखते हैं। ये परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? कौन सा युग है जहां परंपराओं का फाउंडेशन पड़ता है? संगम युग है। संगम युग में जब बाप आते हैं तो जगत पिता और जगदम्बा के रूप में जो कृष्ण बच्चा सृष्टि का पहला पत्ता पैदा होने वाला है उस आत्मा को विशेष महत्व देते हैं। जानते हैं कि इस बच्चे में प्योरिटी की बड़े से बड़ी ताकत भरी हुई है। तो सवाल ये है कि माता पिता की दृष्टि में जिस बच्चे का इतना मान है, ब्रह्मा बच्चा इतना शिकीलदा बच्चा है, उसका ही फोटो नहीं खींचने देते? मुरली में मना किया है कि नहीं? मुरली में मना किया है इस ब्रह्मा का फोटो भी न खींचो, अगर इसका फोटो खींचेंगे तो पतित हो जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो जिन ब्राह्मणों ने इस बात को धारण कर लिया, मान लिया और प्रैक्टिकल जीवन में चलने लगे, ब्रह्मा का फोटो निकाल दिया, उनके अंदर तो ये निश्चय पैदा होने लगा कि हमारा पद ऊंचा बनने वाला है। और जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी और अभी भी ब्रह्मा का फोटो रख रहे हैं, उनका पद नीचा हो गया या ऊंचा होने वाला है? उनका पद ही नीचा हो गया। जिन आत्माओं का पद या आत्मा रूपी मन का अनेक प्रकार की मालाओं के बीच जितना जितना नीच बनता जावेगा, नीचे की स्टेज धारण करता जावेगा, उतना ही वो आत्मा धर्मराज के ज्यादा से ज्यादा डंडे खाएंगी। और जितने डंडे खाएंगी उतना ही पद नीचा हो जाएगा। तो ब्रह्मा का ही फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा का ही फोटो नहीं देखना है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का फोटो रखना है, देखना है, खींचना है? नहीं। इसलिए वो तथाकथित कच्चे ब्राह्मण हैं। उनके घरों में तो फोटो के ढेर लगे हुए हैं। ब्रह्मा के फोटो लो, दीदी के फोटो लो, दादी के फोटो लो, ब्राह्मणों के फोटो लो, पूरी एक मैगजीन की मैगजीन ही बनाई हुई है। हर मास उस मैगजीन में फोटो ही फोटो छपाए जाते हैं। तो पतन होना है या पावन बनने के आसार हैं? पतन हो जाता है और आत्मा का इतना हनन होता है कि वो आत्मा कमजोर बनने के कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लग पड़ती है। स्वधर्म से नीचे गिर के पर धर्म को अपनाना पड़ता है। जो देवताएं थे वो ही हिंदू बने, जो हिंदू थे वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए, नहीं तो हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारा देश सबसे पुराना है, हमारी जनसंख्या संसार में सबसे जास्ती होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? फिर कम क्यों हो गई? क्योंकि जो श्रीमद् भगवान को भी न मानने वाले, भगवान की वाणी पर भी ध्यान न देने वाले, भगवान की वाणी की अवहेलना करने वाले, ऐसे कमजोर ब्राह्मण इस परिवार में घुसे हुए हैं, जो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे देते हैं। और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो और धर्मों की जनसंख्या बढ़ती रहती है और भारतवासियों की जनसंख्या कम होती जाती है। तो बोला कि कितनी भी कोई कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की पूजा करे, परंतु अपने दैवी कुल में, सूर्यवंशी कुल में, देवी देवता सनातन धर्म में इस जन्म में नहीं आ सकता। 84 जन्म लेने वाला पक्का ब्राह्मण सो पक्का देवता नहीं बन सकता। तो 84 जन्म लेने वाले कृष्ण का चित्र तो अभी किसी को नहीं दे सकते। बहुत लोग लेते भी हैं, परंतु हमारी तो शर्त है क्या कि इनों का चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। तुम पहले ही इस बात को बता सकते हो कि इनों में तो कोई ज्ञान ही नहीं है। किनों में? कृष्ण में। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा में कोई ज्ञान ही नहीं है, बाप की भी पहचान नहीं है। बाप की पहचान है तो कहेंगे आस्तिक है, और बाप की पहचान नहीं तो कहेंगे नास्तिक है। नास्तिक माने जिसको आस्था नहीं है। जब पहचान ही नहीं है तो आस्था किसके ऊपर होगी? जो नास्तिक हैं वो शूद्र संप्रदाय हैं, और जो आस्तिक हैं वो ब्राह्मण संप्रदाय हैं। अभी एक ऐसे ज्ञान से विश्व के मालिक बने, गोरे बने, सो आकर के समझो। फिर यही काम शिक्षा पर बैठने से द्वापर युग से लेकर कलयुग तक काले बन जाते हैं। तो ये बात किसे समझानी चाहिए? तुम युक्तियों से समझाते रहो, तुम मेहनत करते हो, फिर ड्रामे में जो होगा सो देखा जाएगा, देखो क्या होता है। हो सकता है तुम्हारी बातों को उड़ाए देवे, जैसे कलकत्ते में किया, कुछ खराबी भी कर सकते हैं, फिर भी जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे होते हैं उनको तो नशा चढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप याद करते हैं, बाप तो सर्वशक्तिवान है, उसकी याद में भी शक्ति भरी हुई है, तो जिन सर्वश्रेष्ठ बच्चों को याद करता है उनमें भी पावर भर जाती है, क्योंकि उन बच्चों को बाप का रिगार्ड रहता है। बहुत बातें समझानी है, फिर पुनर्जन्म भी समझाना पड़ेगा, देहधारियों का पुनर्जन्म होता है, जो विदेही है वो पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आता, जो चक्कर में ही नहीं आता वो माला में भी नहीं आता, 84 के चक्र में भी नहीं आता। शिव के साथ फिर शंकर की भी समझानी देनी है, और शंकर के साथ जो नागबलाएं लगी पड़ी हैं उन नागबलाओं को भी समझाना है। ये कौन है? है ये नागबलाएं जो पड़ी हुई है शंकर को, ये कोई जानवरों की बात है क्या? है कोई जानवर बुद्धि पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मणों की ही बात है, जो समझते हैं कि हम कंधे पर चढ़कर हमेशा बैठेंगे, गले में लटक के रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसी बात है? याद की बात है या गले में लटकने और कंधे पर चढ़े रहने की बात है? याद की बात है। याद से पतित से पावन बनते हैं, कंधे पर चढ़ करके बैठने से कोई पतित पावन बनने की बात नहीं है। तो बाप कहते हैं कि अच्छे अच्छे एक्टर्स होने चाहिए। क्या? अच्छा, शंकर के साथ नागबलाएं अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं है? है? अगर अच्छे होते, बंद करो, तो उनको जानवरों के रूप में क्यों दिखाते? जानवरों के रूप में दिखाने का क्या मतलब है? चित्र में चित्रित किया गया है तो चित्र किस बात की निशानी होती है? वो नागबलाओं का जो चित्र है वो क्या चरित्र दिखाता है? मनुष्य का चित्र दिखाता है, देवताओं का चित्र दिखाता है, भगवान का चित्र दिखाता है, या जानवरों का चित्र दिखाता है? वो जानवर बुद्धि पुरुषार्थी हैं, जो ऐसे समझते हैं कि हम चिपक चिपक के बैठे रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कोई चिपक के बैठा रहे, कंधे पर ही हर समय चढ़ा रहे और बुद्धि बाहर की दुनिया में रखी रहे तो कल्याण हो जाएगा? ये तो रूहानी पुरुषार्थ है, रूह आत्मा को कहा जाता है, मन बुद्धि को कहा जाता है। मन बुद्धि का पुरुषार्थ है, ये कोई देह का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ माना ही पुरुष अर्थ है। पुरुष कहा जाता है पुरी में शयन करने वाली आत्मा, आत्मा के अर्थ जो किया जाता है वो ही पुरुषार्थ है। ये देह से चिपक के रहना या देह की मालिश करते रहना, उससे कोई कल्याण होने वाला आत्मा का नहीं है। अपनी बुद्धि को देखना है कि हमारी बुद्धि का मन का रुझान कहाँ लगा हुआ है। ऐसे तो भक्त लोग भी करते हैं, हाथ में माला गटकते रहते हैं, बुद्धि कहीं दूसरी ओर होती है। भक्ति के कर्मकांड करते रहते हैं, बुद्धि दूसरी जगह लगी हुई होती है। तो इसे भक्ति कहेंगे या ज्ञान कहेंगे, ये तो भक्ति हो गई। तो बाप कहते हैं अच्छे अच्छे एक्टर्स चाहिए, चलो सर्प के गले में सब हो, शंकर के गले में, बाहों में, कमर में जो सर्प बिच्छू टिंडन दिखाए गए हैं वो तो अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं है। फिर कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं? है उस सर्प की तरह विपरीत रह करके जो पुरुषार्थ करते हैं और फिर भी ऊंच पद पाए लेते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर्स कोई हैं? है? बिल्कुल चिपकते नहीं, सामने भी नहीं आते, ऐसे कोई है? अरे है या नहीं है? कौन है? पता नहीं है? अष्टदेव, अष्टदेव सर के ऊपर दिखाई जाते हैं। क्या उनके पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य चिपक के रहना नहीं है? उनके पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है ईश्वरीय सेवा में लगे रहना, तन भी ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, सारा समय ईश्वरीय सेवा में लगा रहे। जो भी तन के संबंधी हैं, उनकी ताकत भी ईश्वरीय सेवा में लगाना। जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं जीवन में, उनकी ताकत भी ईश्वरीय सेवा में लगाना। मन के सारे संकल्प ईश्वर की महिमा में लगा देना, ईश्वर की प्रत्यक्षता में लगा देना, ये उनका जीवन का लक्ष्य है। अब वो नजदीक रहते हो या दूर रहते हो, ऐसा कौन सा पुरुषार्थी है जो शंकर के चित्र में दिखाया जाता है कि रहता तो दूर है और पदवी समान पाए लेता है? है? नहीं है, है? नहीं है। लक्ष्मी रुद्रमाला के पुरुषार्थियों की तरह नजदीक रहकर पुरुषार्थ करने वाली है या दूर रहकर पुरुषार्थ करने वाली है? दूर रहकर पुरुषार्थ करती है, फिर भी दिल पर चढ़ करके रहती है या दिल से उतर जाती है कभी कभी? सदैव दिल पर चढ़ करके दिल तख्त नशीन बनकर के पुरुषार्थ करने वाली है। ऐसे ही गंगा तो अच्छे अच्छे एक्टर्स बनना चाहिए। एक जगह हंगामा होने से پھر نام بدنام کر دیتے ہیں. باقی سروس کے لیے تو یہ مکان بہت اچھا ہے. کون سا مکان؟ یہ شریر روپی مکان جو ہمیں برہمن جیون میں ملا ہے, وہ مکان اچھا ہے یا خراب ہے؟ بہت اچھا مکان ملا ہے. چاہے جیسا بھی ہو لیکن اس مکان سے اچھی سے اچھی سیوا کر سکتے ہیں. ہاں, جو دیہداری ہوتے ہیں ان کو پنرجنم تو ضرور لینا پڑے. جو دیوی گن والے پوجی تھے سو پھر پجاری ضرور بنتے ہیں. یہ بھی تم کو سمجھانا پڑے کہ جو پوجی بنتے ہیں وہی پھر پجاری بھی بنتے ہیں. بھلے جانور بدھی سرپ ہیں, ان کی بھی پوجا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. بھکتی مارگ میں ان کا بھی ایک لوک دکھایا گیا ہے, ایک سنسار دکھایا گیا ہے. کون سا؟ ناگ لوک. اور ناگ پنچمی پر ناگوں کی بھی پوجا ہوتی ہے. تو جو پوجی بنتے ہیں سو پھر پجاری بھی بنتے ہیں. ہم سو کا ارتھ بھی سمجھانا پڑے, سیڑھی بھی رکھنی پڑے. براہمن سو دیوتا, سو چھتری, سو ویش, سو شودر بتانا پڑے کہ شودروں کا اترنا نیچے کیسے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کوئی بھنتا ہے یا نہیں ہے. شودروں کے جیون میں نیچے اترنے کی دیوتاؤں, چھتریوں اور ویشیوں کے مقابلے کوئی بھنتا ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کیا ہے؟ ارے دیوتائیں دھیمی گتی سے نیچے اترتے ہیں, چھتری اس سے زیادہ تیور گتی سے نیچے اترتے ہیں, اور ویشیہ ان سے بھی زیادہ تیور گتی سے نیچے اترتے ہیں, اور شودر بہت ہی تیور گتی سے نیچے اترتے ہیں. دیوتاؤں کا نیچے اترنا صرف گیان اندریوں سے ہوتا ہے. گیان اندریوں کے سنگ کے رنگ سے نیچے اترتے ہیں, اس لیے دھیمی گتی ہوتی ہے. اور دیوتاؤں کے مقابلے جو ویشیہ ہوتے ہیں ان کی اندریاں وشیس ہوتی ہیں, وشے وکار والی اندریاں ہوتی ہیں, وپریت کرم کرنے والی, دکھ دینے والی اندریاں بن جاتی ہیں. تو دیوتاؤں کے مقابلے تیور گتی سے نیچے اترتے ہیں. شریر کے جو انگ ہیں, جان اندریاں یا کرم اندریاں, سکھ لینے کے کاری میں ان اندریوں کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو زیادہ اندریوں سے زیادہ سکھ گرہن کرنے سے دیہ میں دیہبان زیادہ بڑھے گا یا کم بڑھے گا؟ زیادہ بڑھتا ہے. اور شودروں کے لیے تو دکھایا ہے کہ ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک وکاری بن جاتے ہیں, آنکھوں میں بھی وکرتی ویبچار اور کرم اندریوں میں بھی وکرتی بے وچار. سکھ بھوگنے کی اچھا ہی سماپت نہیں ہوتی, कर्म इंद्रियां भले निस्तेज हो जाएं, शक्तिहीन हो जाएं, परंतु मन की जो इच्छाएं हैं उनका पारावार नहीं रहता। तो बुद्धि के द्वारा कर्मेंद्रियों के द्वारा जारा ज्यादा पतन कौन से युग में होता है? कलयुग में होता है, जब शूद्र बन जाते हैं। तो शूद्र कैसे नीचे उतरते हैं ये बात भी तुमको समझानी पड़े। इन बातों को समझने और समझाने में जो आसुरी संप्रदाय है, असुर है ना, उनकी गति क्या होती है, तुम कितना भी अच्छा समझावेंगे, कितने भी अच्छे तरीके से बात सामने रखेंगे, तो भी वो बिघन जरूर डालेंगे। तो उन असुरों को भी युक्ति से हाथ में रखना पड़े, उनको समझाना चाहिए कि शास्त्रों में लिखा है कृष्ण बैकुंठ में था, अभी कृष्ण कहाँ है, अभी राम कहाँ है। शास्त्रों में तो लिखा है जब जब त्रेता होता है तो राम होता है, जब जब द्वापर होता है तो कृष्ण होता है। तो उनको समझाओ कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया, फिर भगवान के आने का क्या फायदा हुआ। वास्तव में वो खुद ही मुझे हुए हैं कि कृष्ण कहाँ का वासी होता है, बैकुंठ वासी था, द्वापर युग का वासी था, या कलह क्लेश की दुनिया महाभारत युद्ध के समय का वासी था। बताओ कि जो भी मनुष्यों के पास मानवीय इतिहास की हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में मनुष्य नीचे उतरता आया है या ऊपर चढ़ता गया है, तन की शक्ति से, मन की सात्विकता से और धन की दृष्टि से भी दुनिया में मनुष्यों का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। गरीबों की संख्या दिन प्रति बढ़ रही है या घट रही है, और साहूकारों की संख्या परसेंटेज में बढ़ रही है या घट रही है, हैं? घट रही है। साहूकार साहूकार होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। तो अच्छी तरह समझाना पड़े कि सृष्टि तो नीचे ही गिरती जाती है, परंतु ये बात भी कोई बिरला ही समझेंगे। यहां बैठे बैठाए बहुत से कुमार कुमारियां हैं जो समझते हैं दुनिया तो अभी बहुत ऊंची चढ़ रही है। कई कई मंजिलों के महलमाणियां अटारियां दिखाई देते हैं, पहले एरोप्लेन नहीं थे अभी एरोप्लेन दिखाई देते हैं, पहले एटम बम नहीं थे अभी एटम बम बन चुके हैं, परंतु یہ سب ہونے کے باوجود بھی دنیا میں مانویہ جنریشن میں دکھ بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا ہے؟ دکھ تو بڑھتا جاتا ہے. تو کوئی برلا ہی سمجھیں گے، نہیں تو تھوڑی بات پر ہی کھٹ پٹ کرنے لگ پڑیں گے. تم بچے شنکراچاری کے لیے بھی سمجھاویں گے کہ وہ خود پجاری اپنی پوجا کیسے کراتے ہیں، خود مندر میں جاتے ہیں، جڑ چتروں کی پوجا کرتے ہیں، مندر میں جا کر کے آرتی اتارتے ہیں، اور اپنی کٹیا میں آ کر کے اپنی آرتی اترواتے ہیں. پہلے اپنی پوجا کراتے ہیں، پہلے اپنی آرتی اترواتے ہیں چیلوں سے، یا پہلے مندر میں مورتی کی آرتی اترواتے ہیں؟ کیوں اپنی آرتی پہلے کیوں اترواتے ہیں؟ کوئی کارن ہوگا نا. ارے کیونکہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں چیلوں کو کہ مندر میں تو پتھر کی مورتی جڑ مورتی ہے، اور یہ تو شیو ہم تو ساکھات شیو کا سوروپ بنے بیٹھے ہیں، اس لیے ہماری آرتی پہلے اتارنی ہے اور مورتیوں کی آرتی بعد میں اتارنی ہے. تو باپ کہتے ہیں یہ سب پتت ہیں، یکتیاں بتائے دیتے ہیں کہ ہم گنگا میں اسنان کرنے کیوں جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جو پتت منشی ہیں وہ گنگا میں اسنان کر کے گنگا کو پوتر کر دیتے ہیں، اس لیے ہم شیو ہم گنگا میں پاؤں ڈالتے ہیں تو گنگا پاون بن جاتی ہے. باپ کہتے ہیں تم کو بہت کچھ سمجھانا پڑے گا، جو ڈرامہ میں ہوا ہے وہی ڈرامہ میں ہوگا. جب تمہاری جیت ہوئی ہے تب جیت ہوگی، ڈرامہ میں نوند ہے. یہ بھی باپ نے سمجھایا ہے، بھارت ماتاؤں کے اوپر انیک پرکار کے دکھ آنے والے ہیں. دکھوں کے پہاڑ گرنے والے ہیں. بیچاری جا کر کے جیو گھات کرنے لگ پڑتی ہیں، ڈوب مرتی ہیں. کتنے ڈھیر کے ڈھیر دکھ ہیں. تو بابا نے کہا تھا دکھوں کی لسٹ نکالو. ستیگ میں یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. ابھی باپ بچوں کو سکھ کا برسا دے رہے ہیں. تو گیان کی اتنی پراکاشٹھا ہونی چاہیے جو دکھ کے واتاورن میں، دکھ کی سمسیاؤں میں، دکھ کی پرستھتیوں میں بھی ہم اپنے سکھی رہنے کا راستہ نکال لیں، من سکھ سے بھرپور رہے، انبھو ہو کہ یہ سنگم یوگ موجوں کا یوگ ہے. اتنی گیان کی پراکاشٹھا ہونی چاہیے. گیان کا ورثہ باپ دیتے ہیں، باپ کوئی استھول دھن سمپتی کا ورثہ نہیں دیتے ہیں. یہ جو چتر ہیں یہ چتر بھی کوئی دیہداری کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. جو سرو سے بول بچے ہیں ان کو یہاں مدھوبن میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا. ماتائیں سمجھاتی ہیں تو کچھ اثر پڑتا ہے, باپ تم بچوں کو سمجھاتے ہیں سدیو ماتاؤں کا ہی نام لو. کہتے ہیں جب گیان امرت پلایا تو اسر بھی آئے, پرنتو انہوں نے گیان امرت نہیں پیا اور ہی جا کر کے ہنگامہ مچایا. کیا ہے اس اسر کا نام؟ راہو. یہ باتیں بھی شاستروں میں یہاں کی یادگار ہیں. یہاں تو ہونی چاہیے شانتی. کوئی اشانت بنتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے ان کے اندر کرودھ کا بھوت ہے, کیونکہ گیان کو پورا پورا سمجھتے نہیں ہیں. کرودھ کو بچے کے موافق گود میں بٹھائے لیتے ہیں. ایسے ایسے ہیں جو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. باپ کہتے ہیں اچھا نہیں چھوڑ سکتے ہو تو باپ اور ورثے کو یاد کرو, دیوی گن بھی دھارن کرنے ہیں کیونکہ دیوتا بننے والے ہو. اچھا بچوں کو گڈ نائٹ, اوم شانتی.